जब ओम शांति बोलते हो तो अंदर में महसूस होता है कि मैं अंदर से रूह, रूह बोला जाता है ना आत्मा को, तो मुख मुख बोल रहा है पर बोलने वाली मैं आत्मा हूं, ऐसे अंदर महसूस होता है। ओम शांति, बाबा ने हमें ये ओम शब्द इसलिए सिखाया कि हमें वो स्मृति बनी रहे। तो जब हम ओम कहते हैं अर्थ तो पता है ना, ओम का अर्थ हम कहते हैं ओम अर्थात मैं वो ही। देखो ओम का आलाप ऊपर जाता है, ऊपर माना जैसे परमात्मा के लिए हम ऊपर इशारा करते हैं, वैसे ओम मैं वो ही, वो ही माना अनादि परम धाम निवासी, भाव ये भरा हुआ हो मैं वो ही शुद्ध आत्मा हूं। अगर हम बार बार मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं याद करेंगे तो शुद्धता किसको कही जाती है, और जब याद आता है मैं शुद्ध आत्मा हूं तो मेरे अंदर मेरा आव भाव कैसा बनता है। वैसे ही जब शुद्ध वस्तु देखो तो एक अच्छी लगेंगी, तो चेहरे में वो अच्छाई का भाव आएगा। तो मैं वो ही माना अनादि अविनाशी शुद्ध आत्मा हूं। तो वो शुद्धता क्या क्या है उस समय तो समझो गरीब सेकंड के लिए वो आएगा, पर वो बैठने के बाद उसका अंदर वर्णन होता रहेगा। तो ये वर्णन या ये मुझे बार बार याद आए और उसका विस्तार होता जाए, इससे हमें अंदर में बहुत फायदा होता है। क्योंकि जब हमें अपनी रूहानियत याद आएंगी तो अंदर का जो हमारा विचारधारा है वो रूहानियत संपन्न हो जाएंगे। और जब हमें इस प्रकार से याद आएगा मैं वो ही शुद्ध आत्मा हूं, तो वो शुद्ध आत्मा के क्या लक्षण है, धीरे धीरे वो बातें हमें याद आती रहेंगी। इसलिए बाबा ने हमें ये ओम शांति, जिसमें समझो मूल ये कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। और अगर सोचा जाए सबसे बड़े से बड़ी शक्ति शांति है, आप सोच के देखना। शांति की शक्ति से देखो कोई भी बात को विचार करना है समझने के लिए भी तो शांत रहना पड़ता है, ऐसा होता है ना, होता है ऐसा। और जब शांति में है, यथार्थ शांति में, तो अंदर उसकी खुशी भी होगी। और जब सचमुच और कोई संकल्प नहीं, इधर उधर की ख्यालात नहीं, तो उसमें अंदर अपना रूहाब बनेगा। रूहाब अर्थात रूहानियत, जिस रूहानियत से जब हमारे अंदर रूहानियत जागृत होती है तो हमारे देखने की दृष्टि बदल जाती है, नैनों के देखने का ढंग बदल जाएगा और चेहरे पे वो हल्की सी मुस्कुराहट आ जाएंगी। ये चिन्ह है कि सचमुच हमें अंदर अपना रूहानियत याद है, या मैं अपने आत्मा स्वरूप में कितना स्थित हूं। इसलिए बाबा हमें बार बार ये याद दिलाते, जैसे जैसे ये बातें हमें याद आती जाएंगी तो जो और बातें हैं वो हमारे से छूटती जाएंगी, क्योंकि इस समय ये याद इमर्ज है, उसमें हम स्थित हैं, रूहानियत में आत्मा स्वरूप की स्मृति जागृत है। तो जो भी आत्मा की क्वालिटीज है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, ये जो उनकी क्वालिटी है वो बीच बीच में मुझे महसूस होती रही। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार शुरू में हम ये चलते फिरते अंदर में यही याद करते थे, क्योंकि हमारे पास और कोई ख्यालात नहीं, जो बाबा ने बताया वो ही अंदर सोचते रहेंगे। तो उससे क्या हो गया कि इसका अंदर विस्तार, क्योंकि बुद्धि में विचारधारा सोचने की तो है ना, तो जो भी हमने बोला या जो हमने सुना उसका अंदर विस्तार चलता रहेगा। जो विस्तार हमें वो रूहानियत जागृत करता रहे, जो बात याद आएंगी तो उसका दर्शन आ जाता है ना, होता है ना ऐसा, आपको कोई भी पुरानी बात याद आ जाएंगी तो उस समय का जो दर्शन होगा, जो कुछ किया होगा, वो थोड़ी थोड़ी यादें आती जाएंगी। तो वास्तव में मैं आत्मा तो अनादि हूं ना, तो जब मैं याद करती हूँ मैं वो ही माना जो अनादि अविनाशी हूँ, मैं वो ही आत्मा अर्थात मैं वो पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मैं वो ही आत्मा हूँ अर्थात मैं वो ही उस अपने परमात्मा पिता की संतान। अगर इसी प्रकार हम अपना परिचय स्वयं स्वयं को याद दिलाते रहें, तो जो जो बात आपको याद आएंगी, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाली हूँ, या फिर मैं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, जैसे जैसे जो जो याद करते जाएंगे ना, उनका भाव अर्थ अंदर में इमर्ज होता जाएगा। तो जैसे बुद्धि और कहीं भी नहीं जाएंगी और उसमें ही लगी रहेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार अंदर में ये तुम्हारा सोच चलता रहे। बाबा हमें क्यों इतना विस्तार बताते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों का विस्तार, एक जीवन का भी कितना विस्तार है, समझो जितने बरस हम लोगों की आयु हो चुकी, इतनी आयु के अंदर कितना विस्तार हमारे अंदर भरा होगा, चाहे जिनों से मिले, जहां देखा, जहां कुछ किया, कितनी बातें याद करके करेंगे। तो जो जो प्रसंग याद आएगा उसकी सारी वो बातें हमारे स्मृति में आ जाएंगी। इसलिए बाबा हमें याद कराते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं वो ही शुद्ध आत्मा हूँ। वो ही की दो अर्थ है, एक तो वो ही परमात्मा की संतान और दूसरा वो ही अजर अमर अविनाशी आत्मा। फिर है वो अविनाशी आत्मा का स्वरूप क्या, मैं सत चित आनंद स्वरूप। फिर आत्मा का रूप क्या है, शान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। अगर इसी प्रकार हम याद करते हैं, वैसे कहते हैं ना चलते फिरते कैसे याद करेंगे, अब कोई मुश्किल बातें थोड़े याद करते हैं, अपनी भूली हुई बात, तो ये थोड़ी थोड़ी बात वो तो हम चलते फिरते याद कर सकते हैं ना। शुरू शुरू में हम चलते फिरते खाते पीते हर समय, क्योंकि नए नए थे और ये ज्ञान भी नया, तो उसको ही हम बार बार याद करते रहते थे। अभी तो इतना विस्तार बताते हैं ना, पर शुरू में मैं आत्मा हूं बस, गरी गरी अपन को याद दिलाएंगे मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं। फिर जब कर्म कर चलते हैं, मैं आत्मा इष्टांगों के द्वारा चलती हूँ, मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देखती हूँ, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुनती हूँ, ऐसे हर कर्म इंद्री को आत्मा से संबंधित करते मैं आत्मा इनके द्वारा करा रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक। तो ये जो अंदर चिंतन चलता है ना, वो चिंतन हमारे अंदर आत्मा का रूहाब जागृत करता है, और जैसे जैसे आत्मा का रूहाब जागृत होता है, वैसे वैसे जैसे कि हमारे वो चैन नैन उसी झलक के दिखाई पड़ते रहे। इसलिए हम जो कहते भाई पहले 2 मिनट साइलेंस, क्यों कि हमें अंदर से वो अपने स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में नजर आ जाए, तो हमारा बोलना हमारा देखना हमारे व्यवहार में वो रूहानियत आती जाएंगी। तो आज की टॉपिक है ईश्वरी पर्सनालिटी, रॉयल्टी और रूहानी पर्सनालिटी, ऐसे है ना। तो ईश्वरी रॉयल्टी अर्थात मैं ईश्वर का बच्चा, भगवान का बच्चा, तो भगवान की रॉयल्टी कैसे कहेंगे, भगवान जो सर्व आत्माओं का पिता है, बल्कि कहें सारे विश्व का रचता है, तो रचता में कितनी अपनी रॉयल्टी होती है, क्योंकि मालिक होता है ना, बड़ा हो गया ना, तो उसमें जो रॉयल्टी, वैसे अगर स्थूल में आए चलने की बोलने की देखने की हर प्रकार की रॉयल्टी, माना ऐसे एकदम छोटी छोटी बातों में बोल देना, छोटी छोटी बातों में, समझो बचपन में होता है ना, अच्छा लगा तो खुश, बुरा लगा तो रुस जाएंगे, ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी बातें होती है, तो रॉयल्टी में ये बातें नहीं आती हैं। तो मेरी ईश्वरी रॉयल्टी, तो ईश्वरी रॉयल्टी में हम ईश्वर के पहले गुणगान करें, ईश्वर क्या है, जो सर्व का पिता है, सृष्टि का रचयिता है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, अर्थात ये सब विशेषताएं भगवान की मानी जाती है। रहम दिल है, प्यार का सागर है, सर्व के सुख दाता दुख हरता है। जितनी मैं हम शुरू शुरू में थे तो कभी कभी बाबा कहते थे बाप का परिचय लिखो या भगवान की महिमा लिखो, देखो कितनी बातें याद आती हैं। तो हम बैठ के लिखते थे, जैसे लिखते जाएंगे वैसे और बातें याद आएंगी, जैसे लिखते जाएंगे वैसे और बातें। एक बार लिखी तो 108, और फिर खुद को ही खुशी होती है, जैसे जैसे बाप की महिमा गाते जाओ, बाप की महिमा के शब्द याद आते जाए तो वो बात हमें खुशी देती जाएंगी, ऐसा मेरा बाप, ऐसा मेरा बाप, ऐसा मेरा बाप। और फिर जैसा बाप वैसे हम बच्चे, ये कह करके और खुशी होती है। और इससे अगर हम सचमुच बाप मानते हैं तो हमारे अंदर ये विचार जरूर उठेगा कि जैसा बाप है वैसे बच्चे मुझे भी ऐसी क्वालिटीज अपने में धारण करनी। इसलिए पहला लेसन आत्मा का लेसन, और जब आत्मा का लेसन दो तो मैं परमात्मा की संतान हूं तो वो बात मिल जाती है। तो बाप की महिमा के गुण गाओ। और हम क्या करते थे, जब थोड़ा भी फ्री समय मिलता था तो हम कुछ न कुछ कोई न कोई पॉइंट पर बैठ के लिखे, जो समझो बाबा ने आज बोली चलाई, उसमें जो अच्छी बात लगी उस पर बैठ करके लिखेंगे विस्तार से, तो क्या क्या बातें हमें बाबा ने इस पर समझाई है। उससे क्या होता था, तो हमारे बुद्धि में ज्ञान का विस्तार, जितना हमारे बुद्धि में ज्ञान का विस्तार आता जाएगा उतना हमारी बुद्धि शुद्ध बनती जाएगी। और ज्ञान की वो शक्ति है, जब ज्ञान का विस्तार हमारे बुद्धि में आ जाता है तो ज्ञान सत्य है, सत्य पिता का दिया हुआ ज्ञान, और ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अविनाशी भी है और सत्य भी है। तो इस ज्ञान को स्मरण करने से मेरे अंदर सत्यता की शक्ति जागृत होती जाएगी, अर्थात जब मैं अपने सच्चे स्वरूप, आत्मा सत्य है, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा सत्य है, परमात्मा अविनाशी है, जब अपने अविनाशी सत्य पिता को माना, अपने अविनाशी स्वरूप को पहचाना, तो वो अंदर में उसकी शक्ति जागृत होती जाए। क्योंकि मैंने माना ना मैं सत्य हूं, तो मैं सत्य हूं, वो सत्यता की शक्ति जागृत होती जाएंगी। जैसे जैसे वो जागृत होंगी या जो भी मैं कुछ करेंगी तो मुझे याद आएगा मैं सत्य हूं। तो झूठ मैं कर नहीं सकती हूं क्योंकि याद है मुझे सत्य क्या है, झूठ क्या है, जानते हैं ना, हर एक जानते हैं ना, जानते हैं ना, जानते हैं। तो जब हम जानते हैं और ये भी मानते हैं तो सत्य करना चाहिए, झूठ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। झूठ बोलने से नुकसान है और सत्य बोलने से अच्छा है, मानते हैं ना। तो जो अच्छा है, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करो, जो करना चाहिए वो करो। तो ये सत्यता की शक्ति, और उसमें मेरा निश्चय बढ़ता जाएगा क्योंकि जब करेंगी तो उसके फायदा मुझे नजर आएगा, और सबसे बड़ा फायदा उसकी मुझे खुशी रहेगी। ईश्वरी रॉयल्टी और रूहानी पर्सनैलिटी दोनों का आपस में कनेक्शन है। पर्सनैलिटी से रॉयल्टी है और रॉयल्टी है तो ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी है ही है। तो पर्सनैलिटी में हमें अपना एम ऑब्जेक्ट बाप की महिमा जितनी हम याद करेंगे उतना हम अपनी पर्सनैलिटी बना सकेंगे। जैसे समझो ऊंचे थे ऊंचा बाप, तो उसकी ऊंचाई क्या क्या है, कौन सी क्वालिफिकेशंस, कौन सी क्वालिटी। तो जब हम बाप की क्वालिटी को याद करेंगे तो वे क्वालिटीज फिर हमें अपने में भी जागृत करनी है, उन पर हमारा ध्यान रहेगा, चाहे बोलने में, चाहे देखने में, चाहे चलने में, हर प्रकार से जैसा बाप वैसे बच्चे। और अधिकतर इन बातों का संबंध, जिसको हम दूसरे शब्दों में धारणा कहें, तो जितनी हमारी धारणा बनती जाएंगी, गुणों की धारणा, चाहे आपस में जो भी हमारा स्नेह बना हुआ है, हमारा स्नेह कोई भी स्वार्थ के वश न हो, कोई अपना स्वार्थ भाव रख करके हम किससे स्नेह करें, ऐसी हमारे में भावना जागृत न हो, ये हमारा आध्यात्मिक स्नेह अर्थात रूहानी स्नेह है। रूहान्यत संपन्न अर्थात आत्मा से संबंधित, आत्मा को रूह कहा जाता है। तो जितना हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे उतनी हमारे अंदर रूहान्यत अर्थात जो भी संसार में जिस भी प्रकार की चलन है, जिस भी प्रकार के बात करने का ढंग है, उन सब से हमारा न्यारा न्यारा क्या रहेगा, जिसके अंदर हमारे दैवी गुण, दैवी गुणों के साथ साथ आत्मा के गुण, आत्मा के गुण तो मुख्य बताए ना, शांति, प्रेम, आनंद, आनंद भी प्रेम से संबंधित रखते हैं। ये जितना हमारे में बढ़ता जाएगा उतना हमारा समान भाव बना रहेगा, क्योंकि सबको हम ईश्वर के बच्चे, हम आत्माएं हैं, ये समान भाव, भले हर एक को अपने अपने स्टेटस के अनुसार हमें जानना है, लेकिन स्टेटस के अनुसार जान करके काम करना ये अलग बात है, परंतु उसमें अंदर की हमारी महसूसता, जैसे हम मानते हैं हम एक पिता की संतान है, तो जैसा बाप हमारे, जैसे लौकिक में भी जैसा अपना खानदान होता है, उस खानदान के अनुकूल हम अपने व्यवहार बनाते हैं, ऐसा होता है ना। इसी प्रकार से जो हमारे ये हमारा खानदान ईश्वर से संबंधित है, रूहानी है, उसके अनुसार हमारा आपस में व्यवहार, चाहे किसका कैसा भी काम है, चाहे किसकी कैसी भी चलन है, वो हुई उसके स्वभाव अनुसार अथवा उसके ड्यूटी अनुसार, पर मेरी दृष्टि में हम एक बाप के बच्चे हैं। वो रूहाब हमें अंदर में सदा जागृत रखना है। ये रूहाब अंदर में रहने से अपनी भी सेफ्टी है, अपने अंदर किसके प्रति भी बुरी भावना जागृत नहीं होंगी, या हम किसकी कोई बात देख करके या कोई ऐसी वस्तु देख करके उसके लिए मेरी इच्छा जागृत हो, जब हम ऐसी स्टेज में हैं तो हमें किस बात की भी इच्छा जागृत नहीं होगी। इच्छा रहेगी जो बाबा हमें समझाते हैं, जैसा बाबा हमसे चाहते हैं हमें वैसा करके दिखाना है। अंदर में अगर हमारी ये भावना है तो ये भावनाएं हमारे अंदर के विचार सदा शुद्ध रीति से ही चलते रहेंगे। जो जो बाबा अच्छी बातें बताते हैं उस पर मेरा जल्दी ध्यान जाएगा, उस बात को हम अंदर ही अंदर वर्णन करती रहेंगी, समझने अच्छी रीत समझने का प्रयत्न करेंगी और समझ करके जीवन में धारण करती रहेंगी। ये हमारा अंदर स्वयं का सूक्ष्म पुरुषार्थ रहेगा। और जब अपने अंदर ऐसा लक्ष्य रहता है तो कोई भी समझो नीची ऊंची बात देखेंगे, देखने में आएंगी, समझ में आएंगी, पर उस बात का न मैं वर्णन करूंगी न उस बात को हम अपने दिल में याद रखेंगे, क्योंकि नीचाई ऊंचाई तो व्यवहार में होती ही है। अब नीचाई ऊंचाई को अगर हम याद रखते रहेंगे तो हम परफेक्ट जो मेरा ओरिजिनल गुण है वो हमारे में कैसे आएगा। ओरिजिनल गुण तो हमारे में तब आएंगे जब हम अपनी ओरिजिनलिटी को अच्छी रीत से समझ लें और समझ करके उनके लिए अपने में विश्वास रखें कि मुझे ऐसा ही बनना है। ये विश्वास देखो लौकिक में तो नेचुरल होता है ना, माँ बाप है जो माँ बाप शिक्षा देते हैं वो नेचुरल, जो माँ बाप कहते हैं जैसे कहते हैं वैसे मुझे करना है, क्योंकि ये नेचुरल प्रथा बनी हुई है। तो हमारी नेचर क्या बन जाएंगी, ये नेचुरल, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ तो वो हमारी नेचुरल प्रथा बने। क्योंकि अभी लौकिकता से हम निकल आए, जब हम बाबा के बने तो समझो शरीर के नाते से जन्म लिया, उस अनुसार हम उनसे अपनी तोड़ निभाएंगे। परंतु हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमारे गुणों की क्वालिटी, हमारे बोलने की क्वालिटी, हमारे व्यवहार की क्वालिटी बाप के शिक्षाओं संपन्न होनी चाहिए। ये अगर हम शुरू में अपना लक्ष्य बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अभी तो सब बड़े हैं ना, एकदम छोटे बच्चे नहीं हैं। जब अभी हम समझदार हैं तो समझदार हमें अपने समझ में क्या रखना है, हम अभी भगवान के बच्चे हैं। भले भगवान को हम इन आंखों से नहीं देखते हैं पर अभी मैंने आत्मा ने अपने बाप को पहचाना है और हम मानते हैं बरोबर बाप गुप्त वेश में इस धरती पर आए हैं जो हमें अपनी पूरी पहचान दे रहे हैं। तो बाप इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी जिसकी पहचान और कोई दे ही नहीं सकता है, जब स्वयं अपनी पहचान देते हैं तब हम उसको समझ सकते हैं, पा सकते हैं। और उसमें हम कितने भाग्यशाली जो बाप स्वयं हमें अपनी पहचान दे करके हमें अपना बच्चा बनाया है। आप दिल में ये सोच के देखो, जब ये हम अंदर विश्वास से बोलते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होती है। होती है खुशी, होती है, होती है। जब खुशी होती है तो देखो जो बात खुशी देती है वो कभी भूलती नहीं है, है अनुभव ऐसा। जो बात अच्छी लगेंगी वो हम बार बार याद करते रहेंगे, होता है ऐसा, होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा उस दुनिया में माना पहले जीवन में जो बातें जिस रीति नेचुरल है, अब हमें अपनी नेचर इस ईश्वरी क्वालिटीज की बनानी। तो नेचुरलिटी क्या होती है हम जानते हैं, नेचर कैसे हमारी बनती है वो भी जानते हैं, संग से, माँ बाप की शिक्षाओं से। तो जब हम अभी बाबा के ईश्वर के बच्चे हैं तो माँ बाप की शिक्षाओं से और उनके संग से, जबकि बाबा रोज हमें, बाप भी है हमारा, टीचर भी है और गुरु भी है, तो बाप के रीति से हमें पालना देता रहता है, टीचर के रीति से रोज पढ़ाई, एक तरफ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ दैवी गुण, जीवन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में स्टेटस चाहिए ना, तो स्टेटस मिलता है उन क्वालिटीज से, जैसी पढ़ाई ऐसी क्वालिटी। समझो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग वर्क जो है उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम भगवान के बच्चे हैं तो जो भगवान हमें शिक्षाएं देते हैं हमारे अंदर वो डिवाइन क्वालिटीज, ईश्वरी क्वालिटीज, ईश्वरी क्वालिटी सबसे सहज और सबसे बड़ी। कौन सी है? भी सबसे सहज पर सबसे बड़ी कौन सी? सर्व के प्रति रहम भावना अथवा शुभ भावना। भगवान की सबसे बड़ी बात कि उनके दया के पात्र हम बने, ऐसे कहते हैं ना, कुछ भी बात होंगी ईश्वर के कृपा के पात्र बने। और बाप का गायन है, दुख हरता सुख करता, सर्व के प्रति रहम भाव। बाबा भी नहीं कहते हैं मुझे इनों को दुखी देख करके बड़ा तरस पड़ता है। तो जब बाप को हम बच्चों पर तरस भावना है तो हम क्यों नहीं उसका फायदा लें, अर्थात बाप के आगे जो बाप हमें शिक्षा देता जाए उसको हम ग्रहण करते, क्योंकि अभी तो समझदार हो ना, अभी इतने छोटे बच्चे आज के जन्म हुए नहीं है, अभी तो बाप का परिचय है, बाप की पूरी नॉलेज, बाप ने जो नॉलेज दी है सृष्टि के आदि मध्य अंत की वो भी समझ में है। परंतु इन सब समझने से मेरी क्वालिटी कितनी शक्तिशाली बननी चाहिए वो हम समझते हैं, लेकिन जो समझते हैं उसको हम अपने धारणा में लाते जाएं तो हमारे जीवन के कर्मों में आती है, क्योंकि जैसे कर्म ऐसा मेरा संस्कार बनेगा। और संस्कार वो वस्तु है, एक बार जिस बात का संस्कार बन गया संस्कार जल्दी बदलेगा नहीं, जब तक उसके बराबरी में और कोई ऐसी उससे ऊंची बात आए। परंतु ये तो ईश्वरी संस्कार, अगर मेरा स्नेहमय संस्कार है, रहम भावना का संस्कार है, तो ये तो अच्छा है, इसको सब पसंद करेंगे। और उनसे सबसे बड़ी बात कि मेरे अंदर की भावनाएं जब शुभ बन जाएंगी तो कोई अशुभ बात मेरे पर प्रभाव नहीं डालेंगी, क्योंकि शुभ की शक्ति अधिक है, सत्य की शक्ति अधिक है। अगर हम सत्य को मानती हैं तो उसका प्रमाण मुझे मिलेगा, मैं उस पर अटल रहूं तो उनकी शक्ति मुझे मिलती जाएंगी और मैं उसमें सफलता जरूर पाऊंगी, ये निश्चित है। ये हमारा यज्ञ शुरू हुआ, इतनी सब माताएं कैसे निकली? बस संद्रा बंद प्रतिज्ञा की। भगवान ने कहा है हमें जीवन में पवित्रता को धारण करना है, और इससे हमारी सर्व कर्म इंद्रिया शुद्ध, मना उनसे दोष भावना द्वेत भावनाएं निकल जाती है। जानते हैं, समझो जो जैसा है हम जानते हैं, पर जानते हुए भी हम उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं चलेंगे, क्योंकि ईश्वरी स्वभाव, सरल स्वभाव, स्नेहमय स्वभाव, तो आप देखेंगी स्नेह भी बहुत बड़ी शक्ति है, और ईश्वरी स्नेह, समान भाव का स्नेह, शुभ भावना संपन्न स्नेह, वो ऑटोमेटिकली अपना काम करता है। कितना भी कोई एंटी हो, कितना भी न मानने वाला हो, भले हमारी बात को न माने, परंतु उसके ऊपर हमारे स्नेह का प्रभाव जरूर पड़ेगा, जो उसको धीरे 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 मोम बनाता जाएगा, नरम करता जाएगा। अगर मेरा ऐसा ही व्यवहार चला आया तो, अगर मैंने फिर उसके स्वभाव को देख के अपन को बदल दिया तो फिर बदल जाएंगे। तो इसमें अपने में एक दृढ़ता की शक्ति, जो हम लक्ष्य रखें उस लक्ष्य पर पक्का अपने को चलाते रहें। कहते हैं ना, जैसा लक्ष्य ऐसे ही लक्षण, लक्षण माना गुण, जिन गुणों से हम कर्म करते हैं, तो हमारे लक्ष्य के प्रमाण हमारे कर्म होने चाहिए। तो कर्म अगर लक्ष्य के प्रमाण है तो उन कर्मों में शक्ति रहती है, पावरफुल होती है, जिन कर्मों से हम सफलता को पा सकते हैं, जो कर्म हमारे दिव्य गुणों से संबंधित रहेंगे। क्योंकि जब बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, हम देवता थे, हम ही देवता थे, देवताओं के सर्वगुण संपन्न, सर्वगुणों की लिस्ट बनाए, कौन से गुण, देखो क्या क्या गुण मुझे याद आते हैं, जितने भी पहले 5 आए, 10 आए, 15 आए, फिर जैसे जैसे हम याद करेंगे और उसमें आए, क्योंकि जैसा जैसा हम व्यवहार में आएंगे हमें पता चलेगा यहाँ भी इस गुण की आवश्यकता है, यहाँ भी इस गुण की आवश्यकता है, फिर ऐसा 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 दिव्य गुण कौन सा है, उस दिव्य गुण को मुझे अमल में लाना है, प्रैक्टिकल में लाना है। ये हमारे अंदर का एक चिंतन, चिंतन से पहले हमारा लक्ष्य हमें दैवी गुण संपन्न बनना है। बाबा ने स्मृति दिलाई है, हम आत्मा ही देवता थी, स्वरूप में देवता, सृष्टि पर पाठ मैंने देवता का बजाया पहले पहले। तो सर्व मनुष्य आत्माओं में श्रेष्ठ देवताएं, जिनका गायन सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले। अब फिर इस एक एक क्वालिटी को, सर्वगुण संपन्न, कौन से गुण, फिर कभी भी हमको चलते फिरते भी सर्वगुण कौन से हैं, फिर हम अपने अंदर गुणों का वर्णन करें, कौन से गुण मुझे याद आते हैं, दैवी गुणों में विशेष विशेष कौन से गुण, फिर चलो पहले थोड़े गुण याद आएंगे, फिर दूसरा बार सोचेंगी ये तो पहले मुझे आ गया, अभी और कौन से, चलते फिरते देखते इसमें तो ये तो अच्छा ही नहीं है, ये तो इसको तो अवगुण कहेंगे, तो इसका गुण कौन सा, अपने से ही ये बातें करें। जैसे देखो पढ़ाई करते हैं तो चिंतन करते हैं ना, उस पर पक्का करते हैं ना। तो अभी तो समय के अनुसार सारी पढ़ाई आपने पढ़ ली है, हमने तो शुरू में सारी पढ़ाई नहीं पढ़ी, शुरू में एक ही लेसन आत्मा का, उसका भी जो अभी मैं विस्तार बताती हूँ ये भी शुरू में इतना विस्तार नहीं था। परंतु आत्मा परमात्मा ये समझने के बाद ऑटोमेटिकली, क्योंकि एकदम छोटे बच्चे तो नहीं ना, चलते फिरते सब कुछ करते तो है ना माँ बाप के साथ, तो इसीलिए फिर उस बात को जैसा जैसा हम पक्का करते गए, एक बात को पक्का किया तो दूसरी आ गई, दूसरे को पक्का किया तो तीसरी आ गई, और बाबा की मुरली सुनते जाओ, मुरली में कोई ना कोई बात मिल जाती है। केवल हमारा उसमें ध्यान अटेंशन बना रहे है, सारी बात अपने अटेंशन की। तो दैवी गुण महिमा करते सर्व गुण संपन्न, अभी लिस्ट बनाए सर्व गुणों में कौन से गुण आएंगे, गुण अवगुण के भेद जो भी याद आवे। समझो क्रोध को अवगुण कहा जाता है, क्रोध के भेद में गुण कौन सा कहेंगे, क्रोध के भेद में कौन सा गुण कहेंगे, प्रेम और शांति। तो ऐसे अगर मोटे रूप में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अभी उनके भेंट में हम गुण निकालें, सर्व गुण संपन्न है ना, 36 गुणों की माला बनी हुई है हमारी। और ऐसे दुनिया में कहते हैं लक्ष्मी के, नारी के 36 गुण होते हैं, नर के लिए 32 गुण बोलते हैं और नारी के लिए 36 गुण कहते हैं। और अगर आप सोचो अब कई पढ़ी लिखी बहनें भी हैं दुनिया में तो रहे हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, तो अगर आप अपने से भी विचार करो ना तो लिस्ट बना सकते हैं। और ये विचार हम चलते फिरते कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं समय नहीं मिलता है, चलते फिरते चलो जिस समय, समझो कोई और काम में है, हम पढ़ाई करते हैं चलो पढ़ाई के समय पढ़ाई की, बाकी समय क्या करते हैं, स्कूल से छूटे पढ़ाई पूरी हुई काम वाम अपना कर दिया, चलो भोजन करते हैं उस समय कौन सा काम है, भोजन करना तो कॉमन बात है ना, वो तो नेचुरल होता है, उस समय विचारधारा क्या काम करती है। तो इससे क्या होगा, हमें अंदर महसूस होगा कि अंदर आत्मा की शक्ति कितनी सूक्ष्म है जो ये चला रही है। हम जो कहते हैं ना आत्मा ही करती है, उसका प्रमाण शरीर से हम काम करा रहे हैं, विचारधारा आत्मा का काम है। जब हमारे में ऐसी दिव्य गुणों की धारणा, मैं अभी उसका वर्णन नहीं कर रही हूँ, आप जानते भी हो और इसको विचार करके लिस्ट बना सकते हो, पर ये करते जाएंगे ना, तो करने के बाद आप समझो चलते फिरते रहेंगे या कोई और काम में बैठे होंगे तो भी आपका वो चिंतन चलेंगे, शुद्ध चिंतन है ना, शुद्ध चिंतन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। और वो शक्ति हमें अंदर में दृढ़ता दृढ़ बनाती है, माना पक्का करती है उन गुणों में। जैसे जैसे वे गुण हमारे में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी रूहानियत और रॉयल्टी कर्मों में आती जाएंगी। रूहानियत भी कर्मों में अर्थात दृष्टि से, वो दृष्टि हमारी नम्र रहेंगी, दृष्टि से निर्माणता नजर आएंगी। और स्नेह, रूहानी दृष्टि में स्नेह और निम्रता, इससे भी मिलेंगे तो स्नेह से मिलेंगे। जिस स्नेह के अंदर और कोई भाव नहीं, बस आत्मक स्नेह और कोई संकल्प नहीं, इससे कुछ कराना है या इसको कुछ कहना है, कोई स्वार्थ भाव नहीं। जैसे जैसे हमारी ये स्थिति बनती जाएंगी, वैसे वैसे हम देखेंगे हमें आत्मा भान पक्का याद रहेगा, और जिससे भी मिलेंगे तो आत्मा और परमात्मा दोनों की दोनों हमें याद आते रहेंगे। याद तो कितनी सहज भी है और क्विक है, बड़ी तेज रफ्तार है विचार की रफ्तार, कितनी संकल्प कितना तेज गति से चलता है ना। संकल्प बैठे बैठे ख्याल भी नहीं होगा, कहीं पुरानी पुरानी बात याद आ जाए। तो ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है जो उसकी चेतनता कैसा कैसा काम तेजी से करती है। ये सब इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, वो भले रूह को नहीं मानते हैं परंतु है वो शक्ति तो काम कराती है। ऐसी ऐसी हमारी चिंतन की धारा बनी रहे तो हमारा बोल चाल, बोलने में भी हमारा मिठास बना रहेगा, बोलना भी हमारा स्नेह संपन्न रहेगा। किससे बोलेंगे, हम भी खुश और वो भी खुश, खुशी खुशी से बोलेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। इन इन बातों को दैवी गुण कहा जाता है। तो जितना हमारे जीवन के अंदर गुण संपन्न होते जाएंगे तो जो भी हमारे में पहले के अवगुण है, जोश से बोलना, कोई बात अच्छी न लगे तो उसी रीति से ऐसे शब्द बोलना, ये बातें हमारे से छूटती जाएंगी। रॉयल्टी से बोलना, माना हर बात धीरे और समझ से बोलना, इसको मैं बोलेंगी तो उसका इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ऐसा कोई बोल न बोलूं जो उसको पसंद न आए, अर्थात जिससे उसको दुख हो। दुख देने वाले बोल नहीं बोलेंगी, और स्नेह से बोलेंगी तो ऑटोमेटिकली वो भी स्नेह से स्वीकार करके खुश होंगे। मैं भी खुश, वो भी खुश, हमारी अंदर की खुशी बढ़ती जाएंगी, जो खुशी हमारे चेहरे पे झलकती रहेंगी, जिस कारण हमारा चेहरा सदा चेयरफुल खुशनुमा। अभी खुशनुमा चेहरे के लिए आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है। योग में बैठते हैं तो हमारा चेहरा खुशनुमा होना चाहिए। बाबा से मिलते हैं, बाबा से बातें करेंगे। एक बाबा शब्द भी ऐसा है, बच्चा अपने बाप से मिलता है तो कितना खुश होता है। तो आत्मा परमात्मा से बात करती है, एक तो कितनी वंडरफुल बात जो आज के दुनिया में कोई नहीं करता, और हमें बाप ने सिखाया है, बाप ने अपना परिचय दिया है। एक तो ये बहुत बड़े से बड़ी बात, कोई जानता ही नहीं कि भगवान भी आकर अपना परिचय देता है, और देता है तो किसको देता है ये किसको पता नहीं, कैसे देता है, किसको देता है, कब देता है, किस रूप में देता है, कोई नहीं जानता है। आज था ना मुरली में, भगवान आता है तो कैसे आता है, भगवान को भी कोई अपनी वो माता तो चाहिए जिससे इतनी सारी रचना रचे। तो माता पिता कहने से दुनिया के रीति में समझ में आता है स्थूल रीत, परंतु ये कितना महीन रूप, है हम आपस में भाई बहन एक बाप, बाकी हम सब आपस में भाई बहन। तो और कोई भी देह का संबंध है, क्योंकि देह धारण किया है तो कोई देह का माता है, कोई पिता है, कोई बहन है, कोई भाई है, ये देह के संबंध। अभी देह के संबंध होते वो तो हम जानते हैं, समझते हैं, पर आत्मा के जो संबंध है हमें अभी उन बातों को पक्का करना, क्योंकि संगम पर ये परिवर्तन होते हैं। तो अभी संगम पर हमें जो हमारी ओरिजिनलिटी है उस ओरिजिनलिटी को धारण करना, जिसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। निर्विकारता में मोटे रूप में कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अभी ये काम की बात जो है, पवित्रता की बात जो है, ये बड़ी महीन है। आज सबकी दृष्टि देह की दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि देह को जानते हैं, देह के नाम से बुलवाते हैं, देह से काम करते हैं, परंतु देह को देखते हमें याद रहे आत्मा इस शरीर से देखती है, तो मैं भी देखने वाली आत्मा हूं तो आत्मा को ही देखूं। अच्छा, इन आंखों से नहीं देख सकती हूं, परंतु आत्मा को समझ करके अपने आत्मा के गुणों से उसे व्यवहार करूं, क्योंकि मुझे पहचान है, बाबा ने मुझे ये स्मृति दिलाई है। जब बाप ने मुझे स्मृति दिलाई है तो मैं स्मृति स्वरूप बनकर के काम करूं। अगर मैं स्मृति स्वरूप बन के करेंगी तो सामने वाले को वो झलक महसूस जरूर होगी, और मेरा काम यही है, जब भगवान ने मुझे अपनी शक्ति दी है तो उस शक्ति को काम में लाना और उनको भी बाप का इस शक्ति के द्वारा परिचय देना। ऐसे ऐसे अगर हम अपने अंदर में विचारधारा बना लेते हैं, देखो सारे दिन में आपको कितना अपने से ही मजा आता है, और कभी कभी ये विचार करते करते ऐसे अच्छे अच्छे विचार जागृत होंगे जो खुद ही खुद से खुश होंगे, क्योंकि नॉलेज तो बाबा ने दी है इतनी जो बुद्धि में भरी हुई है। जब नॉलेज भरी हुई है उस नॉलेज को काम में ला, जैसे लौकिक में जितनी समझो ऊंची नॉलेज पढ़ते हैं तो समझते हैं ना उससे हम फायदा ले कमाई करें। जब इतनी ऊंची नॉलेज ली तो क्यों ना हम कमाई करके उसका फायदा ले, ऐसे कहेंगे ना। तो जब बाबा हमें इतनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं जिससे हमें 21 जन्मों की कमाई, घर बैठे सब कुछ साधन, कोई बात की कमी नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न, जीवन के दैवी गुण भी भरपूर, और शरीर के लिए जो कुछ चाहिए वो भी भरपूर, संपत्तिवान भी और गुणवान भी, दैवी गुणवान, ये विचार ही हमें कितना खुशी देता है। देता है खुशी, ऐसा सोचो तो विचार ये खुशी देगा ना। जब विचार मुझे खुशी देता है तो जब मैं अपने जीवन के कर्मों में लाएंगी तो मैं कितनी खुश रहेंगी, और वो खुशी दूसरों को भी मिलेंगी, क्योंकि मुझे देख करके, जैसे कर्म मैं करूंगी मुझे देख के और करेंगे। ऐसे ऐसे हम अपने अंदर की विचारधारा बना दें, देखें फिर हम कभी भी अपनी बात से यानी अपनी इन दिव्यता से हटेंगे नहीं, और वो दिव्यता अंदर ही अंदर मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाती जाएंगी। फिर बाबा जो कहते हैं निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी, इसी एज में सूक्ष्म अहम भाव देह का जरूर रहता है, जिस कारण अहंकार क्रोध इच्छाएं ये सब बनी रहती है। भले कहेंगे मेरी भावना तो ये है ना, मैं कुछ आगे बढ़ूं, परंतु आगे बढ़ने ईश्वरी परिवार के अंदर आगे बढ़ने की विधि, जितना हमारे अंदर ईश्वरी भावनाएं शुभ भावनाएं सुख देने की भावनाएं दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना अर्थात दूसरे के लिए कल्याण की भावनाएं जितनी हमारे अंदर इस जीवन में ये भावनाएं होंगी उतना मैं ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती जाऊं। ये करके देखो, हम लोगों ने तो जीवन ऐसे ही चलाई है, शुरू से लेकर कभी ये नहीं कि मुझे ये मर्तबा मिले, मुझे ये ड्यूटी मिले तो मैं ये करूंगी, जो भी मिले जैसी भी सेवा हो। सुना है ना हमारी शुरू की हिस्ट्रिया, कोई बात की इच्छा नहीं, कोई पहनने की इच्छा नहीं, जो कुछ लौकिक का वो लौकिक के पास, वो छोड़ लौकिक ने दे दिया तो सब बाबा के हवाले, हम वो स्वीकार नहीं करेंगे, हम वो यूज नहीं करेंगे, हमें तो अभी ईश्वर के बने हैं, ईश्वर का ही खाना है पीना है, उनके साथ रहना है और ऐसे ही बनना है। तो जब इस प्रकार हमने अपना लक्ष्य पक्का रखा तो आगे बढ़ते गए, धारणा हमारे लिए बड़ी सहज रही। आज की दुनिया में ये पवित्रता का लक्ष्य प्यूरिटी आंखें बड़ी धोखा देने वाली है। देखो बैठे रहते हैं, इधर से कोई जाएगा इधर आंखें सब की उधर जाएंगी, कहाँ जा रहे हैं किधर जाते हैं क्या करते हैं, वहां तक देखते रहेंगे, ये नहीं सोचेंगे हम बैठे कहाँ हैं किस लिए बैठे हैं। योग में बैठे होंगे तो भी ऐसे दृष्टि काम करेंगे। ये कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल स्थिर है तो अडोल है अचल है, स्थिरता नहीं है तो अडोल चित नहीं रहेंगे, चित्त में भी चित्तवना कुछ न कुछ छला चलती रहेंगी, उधर देखेंगे तो सूक्ष्म बड़े हल्के रूप में कुछ न कुछ उसके प्रति विचार, कहाँ जा रहे हैं क्यों आए हैं, थोड़ा मोटे रूप से नहीं इसलिए ध्यान नहीं जाएगा, पर ये चलता है मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, मैं अपने सूक्ष्म संकल्प को जान सकती पहचान सकती और परिवर्तन कर सकती, ये अपना लक्ष्य। तो ऐसे अपने में दैवी गुणों की धारणा, जो कुछ देखें बुद्धि तो समझ जाती है ये अभी के काम के है या नहीं, मेरी बाबा की शिक्षा के अनुसार अभी हमें ये चीजें काम की है या नहीं हम समझ सकते हैं, इतनी बुद्धि है। केवल हमको निर्णय करना है ये नहीं करना है ये करना है, बस निर्णय करके और अपने को उस प्रमाण चलाना। अभी के समय अनुसार ये सब में शक्ति है। हम निर्णय करके अपने को बाबा की तरफ चला सकते हैं। फिर उसके लिए संग चाहिए, उसके लिए हमारी दिनचर्या भी ऐसी चाहिए, भले हम वो भी करें जो जरूरी है, पर साथ साथ उसके कंपैरिजन में ये भी साथ हो। जैसे आत्मा तो सदा है ना, शरीर भी उनके साथ सदा है, शरीर से भी काम कराती है और अंदर जानती है, समझती है, राइट रॉन्ग को समझ करके जो राइट है वो मुझे करना है और करते चले तो राइट के एक्शन से हमारी सत्यता की शक्ति, दिव्य शक्ति बढ़ती जाएंगी और वो दिव्यता, दैवी गुण हमारे अंदर इमर्ज होती जाएगी। जैसे कहा जाता है जैसा बीज झाड़ में ऐसा ही फल आएगा, तो फल पहले नहीं आता है, पहले तो उसका विस्तार, डार टार टारियां बढ़ती जाएंगी फिर फल निकलता है। पर पता है बीज कौन सा है, आखिर फल तो ये ही आना है। तो बाबा ने बताया हमारा बीज कौन सा है, कौन सा है हमारा बीज, हम आदि सनातन सत धर्म के हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। जब हम है ही देवता धर्म की आत्माएं तो हमारी तो ओरिजिनलिटी दैवी गुण संपन्न है। पीछे बैठने वाले सुनाई पड़ता है, आता है समझ में, अच्छा लगता है, सोच रहे हैं ये बात ठीक है, ऐसा ठीक है, ऐसे चलता है मन के अंदर, चलना चाहिए, तब तो कहेंगे आत्मा जागृत है, नहीं तो कहेंगे कानों से सुन रहे हैं, आत्मा शांति से बैठी है, नहीं आत्मा सुन रही है। आत्मा सुनेगी एकदम से जागृत होकर के उस बात को अपने में, क्योंकि बुद्धि आत्मा की चेतन शक्ति है। संकल्प मुझे आत्मा की चेतन शक्ति है और संकल्प की गति कितनी तीव्र है, अर्थात मैं आत्मा कितनी तीव्र गति वाली हूँ, ये बाबा ने हमें अपना परिचय दिया। ऐसे ऐसे बार बार अपन को याद दिलाना चाहिए कि बाबा ने हमारे पर कितनी मेहर की है, कितना कितनी कृपा दृष्टि है बाबा की हम बच्चों पर। अगर इसी प्रकार हम करते रहेंगे तो जो हमारी पुरानी आदतें हैं, हम पुरानी आदतों से घबराएं नहीं, सिर्फ निश्चित करें, अभी वो तो पुरानी है ना, पुराना पार्ट तो हमने बजा के अभी पूरा किया है, अभी तो हमारा नया पार्ट जो आदि में हमारा पार्ट था, अभी तो बाबा हमारे से फिर आदि काल का पार्ट प्ले कराना चाहता है, तो अभी तो मुझे नए उसी पार्ट की तैयारी करनी। ऐसे ऐसे हम अपने को बोले तो देखो एक तरफ खुशी होंगी और दूसरे तरफ इन बातों को धारण करने के लिए अंदर में उमंग और दृढ़ता जागृत होती जाएगी। और अगर उसी के कारण हम करते चले तो जितना हम अपनाते जाएंगे दैवी गुणों को, जितना हम पवित्रता की शक्ति को मानते जाएंगे, और ऐसी कोई भी बात सामने आए, समझो कोई ऐसा आता है, कुमारियों के आगे तो कहेंगे समझो कोई भाई आता है, बड़ा प्रेम से आके बात करता है, भले बात ज्ञान के रीति से कुछ पूछेगा करेगा, पर करने का ढंग, अगर मैं शक्तिशाली हूँ, ज्ञान मेरे बुद्धि में उस समय याद है, तो मैं परख लूंगी और उससे उसी के रूप से मैं बात नहीं करेंगी। सुन लिया, उसको समझ लिया और थोड़े में उस बात को पूरा कर लूंगी और चली जाऊंगी। आज के जमाने में इस बात की हमें बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि ये स्त्री चोला बड़ा आकर्षण वाला है और वो दिल की बड़ी साफ होती। साफ माना उनों के अंदर जास्ती झूठ पाप नहीं। आजकल तो वो भी कम नहीं है क्योंकि वो भी आजकल की पढ़ाई करके आगे बढ़ती है बरोबरी में, फिर भी तो हम अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से अपनी शक्ति को याद करते हुए अपने जीवन के कर्मों को ऐसे ध्यान से करते रहें। दैवी गुण संपन्न, जहां देखें कोई भी ऐसी बात है हम स्वयं उसे किनारा करें, थोड़ा भी उसमें साथ देना माना कुएं के तरफ जाना, और अगर थोड़ी भी अंगुली खिसक गई पांव की तो गिरना ही संभव होगा। इसलिए हमें स्वयं को बचा के रहना है और सदा याद रहे, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, बाबा के शिक्षाओं के अनुकूल चलना है। बाबा ने हमें कार्य दिया है, पावन विश्व बनानी है, पवित्र दुनिया स्थापन करनी है। इसलिए पवित्र, हम कहते हैं ना आत्मा का स्वधर्म पवित्रता और शांति, शांति और पवित्रता को हमें अपना धर्म मान करके धर्मयुक्त कर्म, धर्मयुक्त व्यवहार और धर्मयुक्त गुण धारण करना है। ऐसे हम स्वयं की शक्ति को जागृत करते हुए उन्हीं गुणों को अपनाते जाएं, तो हमारे अंदर रूहानी पर्सनैलिटी और ईश्वरी रॉयल्टी, बोलना देखना जैसे बाप न्यारा होते शरीर के द्वारा कार्य कराता है, वैसे मैं आत्मा भी आत्मस्वरूप में रहते इस शरीर की कर्म इंद्रियों से मैं जो हूँ जैसी हूँ, जिस बाप की बच्ची हूँ उन क्वालिफिकेशन से, इन शरीर से हमें कर्म, दिव्य कर्म करानी है। ऐसे स्वयं को दैवी गुण संपन्न बनाते हुए स्वयं के अंदर पवित्रता की शक्ति, दिव्यता के गुण और रूहानी स्नेह संपन्न व्यवहार, बोल में मिठास, दृष्टि में रूहानियत, कर्मों में दिव्यता और श्रेष्ठता, इस प्रकार से हम अपनी जीवन को ऊंच बनाते हुए आगे बढ़ते रहें। और एग्जाम्पल बनकर बाबा के आगे अपना ये कार्य प्रत्यक्ष करते रहें। ओम शांति शांति शांति। बाकी तो चार सब्जेक्ट हमारी ज्ञान योग धारणा सेवा, जैसे जैसे समय मिले हर सब्जेक्ट को हम विचार चलते फिरते विचार करें, थोड़ा सा फ्री समय मिले जो शुभ विचार चले उसको हम नोट करते जाएं। हम क्या करते थे सवेरे अमृत वेले के योग के बाद तैयार होके स्नान पानी करके फिर जो समय मिलता था जब तक हमारा दूसरा क्लास शुरू हो तब तक जाके एकांत में बैठ करके जो कुछ योग में अनुभव हुआ जो कुछ थोड़े विचार चले वो बैठ के नोट करेंगे। जैसे लिखने बैठेंगे तो और भी अच्छे अच्छे विचार आते जाएंगे और उस समय लिख करके फिर अपने क्लास में चले जाएंगे। फिर टाइम मिला सोने के टाइम थोड़ा उसको पढ़ लिया तो और अच्छे विचार लगे, फिर आराम से नींद भी सुखा ले और फिर उठो तो उन्हीं शुभ विचारों से उठो। ऐसे हम अपनी दिनचर्या को फिक्स करके स्वयं को आगे बढ़ाते चले। ऐसे ही समझें जो हम देवता बनने वाले हैं परंतु देवताओं के आदि गुण दैवी गुण अर्थात अपने दैवी संस्कार तो हमें यहाँ ही बनाने हैं, इसलिए उन संस्कारों को हम चेतन बुद्धि की विचारों की धारणा से संकल्प की शुद्धि से दिव्य विचारों के आधार से हम अपनी दिव्य जीवन बनाते हुए ऐसे दैवी दिव्य कर्म करते जाएं और अपने को देवता स्वरूप में अनुभव करते रहें। ओम शांति। तालियों की धूम तो बहुत अच्छी। मैं अपने क्लास में तालियां नहीं चाहती इसलिए तालियां बजा करके खुशी प्रकट कर लेते हो, खुशी को हम समाना सीखें, अपने अंदर कायम रखें और कायम रखते हुए उसको बढ़ाते चलें। इसलिए तालियों को अंदर रखें, खुशी अंदर भरती जाए और उस खुशी से हम अपने कर्मों में व्यवहार में काम लाते, खुशी को उसमें काम लाते रहें तो हमारे दिव्य गुण जागृत होते जाए और दिव्य गुण संपन्न श्रेष्ठ कर्म करने की आदत बनती जाए। अभी 2 मिनट हम साइलेंस करेंगे। अगर ये हम हर एक अपने जीवन में पक्का करें, कोई भी कर्म करें, जहां भी कोई कर्म करना शुरू करें 1 मिनट के लिए एकदम अंदर स्वयं को आत्मा को जैसे हम इमर्ज करके देखते हैं वो शक्ति वो प्रकाश उस प्रकाश उज्जवल प्रकाश में हम अभी कर्म क्षेत्र पर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराती है। ऐसे शुद्ध संकल्प से फिर हम कर्म में आ जाएं, और जब हमारा कर्म संपन्न हो जाए, अब जो निश्चित कर्म था संपन्न किया, अब फिर बाबा को जो कराना था किया, फिर बाबा के शुक्रिया मानकर एक मिनट के लिए बड़ी खुशियों संपन्न रूहानियत से बाबा से मिलन मनाकर फिर हम अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं।